ओम शांति। भारत के महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, इन सर्च ऑफ गॉड, जिसमें कवि कहता है, अनंत अनंत जन्मों से मैंने भगवान को ढूंढा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां पर भगवान की खोज न की हो, ऐसे कोई जगह न थी जहां मेरे कदम न पहुंचे हो, सब जगह भगवान को ढूंढा, जमीन पर ढूंढा, आसमान में ढूंढा, और एक दिन लगा आसमान में कोई सितारा है, वहां भगवान का शायद घर हो, तो वहां पहुंचा, पर जैसे ही पहुंचा तो पता चला भगवान ने अपना घर बदली कर दिया है, अब वहां कोई नहीं रहता। फिर से खोज चालू की, सब कुछ दांव पर लगा दिया, खोज ही सब कुछ बन गया, यह अन्वेषण ही जैसे जीवन का लक्ष्य बन गया, खोजता रहा, भटकता रहा, और एक दिन अचानक दूर आकाश में देखा भटकते हुए, एक घर था जिस पर लिखा था ये भगवान का घर है। इतना खुश हो गया, आनंदित हो गया, खुशी का कोई पारावार नहीं, जिसकी खोज थी, जिसे पाना चाहता था, वो मिल गया, तेज भागने लगा, सीढ़ियां थी, ऊपर घर था, दरवाजा था, और लिखा था दिस इज गॉड्स होम, ये भगवान का घर है। तेजी से भागते हुए, खुशी में नाचते हुए द्वार पर पहुंचा, जन जन की इच्छा थी कि प्रभु से मुलाकात हो जाए, और अभी द्वार पर दस्तक ही देने वाला था कि हाथ रुक गए। मन में विचार आया, यदि सही में यह घर भगवान का निकला तो मेरी खोज का क्या होगा, जन जन उसे ढूंढा है, जिसे शास्त्रों ने असंभव समझा था, आज वो साकार होने लगा है, जिसे कहा था ये बहुत कठिन है, जिसके लिए कहा था अगम अगोचर है, जिसके लिए कहा था वो कभी नहीं मिल सकता, आज वो सम्मुख है, द्वार पर लिखा है ये भगवान का घर है, और मैंने उस भगवान के द्वार को पा लिया, परंतु एकदम ठिटक गया, सोचा यदि वास्तव में भगवान हो और भगवान ने दरवाजा खोल दिया तो मेरी खोज का क्या होगा। जो ये लंबे समय की आदत पड़ गई है भटकने की, उसका क्या होगा। ये खोज ही ऐसे हो गई है जैसे खोज ही जीवन है, और यदि वो मिल जाए फिर उसके बाद क्या होगा, और यदि वो मिल जाए फिर जीवन का ये संघर्ष, उसका क्या होगा। भय लगा, कपने लगा, सोचा अभी तो मैंने दरवाजा खटखटाया ही नहीं, क्यों खटखटाऊं, अपने जूते निकाले चुपचाप, ताकि कोई आवाज ना हो, ताकि यदि भगवान अंदर हो तो वो सुन ना ले, और पीछे मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कवि लिखता है, मैं आज भी भगवान को ढूंढ रहा हूं, सब जगह ढूंढता हूं परंतु उस जगह नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है वो वहां है। क्योंकि यदि मैं वहां चला गया फिर मेरी इच्छाओं का क्या होगा, मेरी तृष्णाओं का क्या होगा, फिर मेरा अपना जो व्यक्तिगत मैं है उसका क्या होगा। पता नहीं भगवान दरवाजा खोल दे और क्या मांग ले। फिर तो मेरा अपना एक्जिस्टेंस वजूद वही विलीन हो जाएगा। कभी लिखता है मैं अभी भटक रहा हूं, सब जगह जाता हूं, इर्द गिर्द घूमता हूं परंतु वहां नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है कि वो भगवान का घर है और खोज जारी है। क्या हमने पा लिया या हमारी भी खोज जारी है? पा लिया, वास्तव में पा लिया, या पाकर भी वो अनमिला ही है। प्राप्त होकर भी अप्राप्त है। सुबह की अव्यक्त वाणी, तीन शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है आत्मा और परमात्मा के इस संयोग के लिए। एक मिलन, दूसरा मेला और तीसरा मिलाप, आत्मा और परमात्मा का मिलन, मेला और मिलाप। संसार के तीन प्रकार की आत्माओं की चर्चा की है, उनके तीन प्रकार के प्रश्न, और बाबा ने हमें दिए तीन प्रकार के समान, तीन 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 और तीन। संसार में तीन प्रकार की आत्माएं हैं, एक है वेटिंग वाली, दूसरी है होपिंग वाली और तीसरी है सिंगिंग वाली। पहली है इंतजार करने वाली आत्माएं, जो ये कहती है कि भगवान से मिलना असंभव है, जो ये कहती है कि भगवान से मिलना बेअंत है, जो ये कहती है कि भगवान से मिलना मुश्किल है और इंतजार कर रही है कि ये मिलन होगा, होगा, परंतु कब होगा पता नहीं। तो पहले प्रकार की आत्माएं हैं वेटिंग वाली आत्माएं, इंतजार करने वाली आत्माएं, शायद न भी हो, शायद एक जन्म काफी नहीं, शायद बहुत जन्म लेने पड़े क्योंकि इस जीवन की जो साधना है ऐसा नहीं लगता कि उससे भगवान मिलेंगे। सोचते हैं शायद किसी और जन्म में मिल जाए, ऐसी वेटिंग वाली। दूसरी आत्मा है होपिंग वाली, उम्मीदों पर चलने वाली आत्माएं, उम्मीदों पर चल रही आत्माएं कि कब मिलन होगा। उम्मीदें बहुत है, निराश नहीं हुई है, ढूंढ रही है, खोज रही है, परंतु अभी भी आशा बंधी हुई है, अभी भी लगता है मन में कहीं पर कि शायद उससे मिलन होगा। प्राणों में आतुरता है मिलन की, हुआ नहीं है। वेटिंग वालों ने कहा है असंभव है, मुश्किल है, बेअंत है, परंतु आशा नहीं छोड़ी, उम्मीद का सितारा अब भी मनाकाश में चमक रहा है। तीसरी आत्माएं है सिंगिंग वाली, वियोग के गीत गाने वाली, कब होगा, कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वियोग है, सेपरेशन है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन। हिंदी साहित्य कहता है बिछोह, बिछोह अर्थात विरह। कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, मिलन के गीत, विरह की अग्नि प्रज्वलित है, वो मिला नहीं है परंतु आग जल रही है। वेटिंग, होपिंग और सिंगिंग, तीन प्रकार की आत्माएं, तीन प्रकार के प्रयत्न करने वाली आत्माएं, तीन प्रकार की आत्माएं जो भगवान को खोज रही है, तीन प्रकार के प्रयत्न जिससे भगवान को खोजा जा रहा है, तीन मार्ग जो संसार की आत्माएं अपनाती है। बाबा ने कहा वो है कब वाली आत्माएं, वो है कब वाली वियोगी आत्माएं, और तुम हो अब वाली सहज योगी आत्माएं। उन्हें अन्न मिला है, तुम्हें मिल गया है। उन्हें अन्न देखा है, तुम्हें तुमने देख लिया है। उन्हें अभी भी उन्होंने पाया नहीं, अन्न पाया है, तुमने पा लिया है। भगवान कह रहा है तुमने पाया है। उनके तीन प्रश्न हैं। कौन से तीन प्रश्न? पहला प्रश्न है कब मिलेगा, कितना समय लगेगा। दूसरा प्रश्न है भगवान में मन कैसे लगाए। तीसरा प्रश्न है उससे प्यार कैसे करें। ये संसार की आत्माओं के तीन प्रश्न हैं। कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा, उससे मन कैसे लगाए। मन जो इतना भटकता है, चंचलम ही मन कृष्ण, मैं क्या करूं हे गोविंद, मेरा मन भटकता है। मन को वश में करना उतना ही कठिन है जैसे विचरती हुई इस वायु को वश में करना। हे माधव मुझे बताओ मन को कैसे वश करूं। दूसरा प्रश्न है आत्माओं का कि मन को ईश्वर में कैसे लगाए। हाउ टू फोकस माइंड ऑन गॉड। पहला समय से संबंधित है, दूसरा मन से संबंधित है, और तीसरा प्रश्न है कौन सा? भगवान से प्यार कैसे करें, किस विधि से प्यार करें, किस तरह प्यार करें। तीनों ही प्रश्न के उत्तर बाबा ने कहा तुम उन्हें दोगे। किस तरह? इस तरह। पहला प्रश्न, ये मिलन कब होगा, तो तुम क्या कहते हो? कितना समय में होगा, तो तुम क्या कहते हो? एक सेकंड में होगा, तुम क्या कहते हो? सदा और सहज ये मिलन है। बाप और बच्चों का मिलन कभी मुश्किल नहीं हो सकता। तुम क्या कहते हो? हम चलते, फिरते, पलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, उसी के साथ है। मिलन इन प्रोसेस। कब होगा? नहीं, हो रहा है। कितना समय में होगा? नहीं, अभी एक सेकंड में हुआ है। कंटिन्यूअस मिलन है, निरंतर मिलन की ही अवस्था में है। मिलन गंतव्य नहीं, रास्ता ही मिलन है। Not the path, not the destination, but the path. वो टापू वहां है और ये झील। नैया में बैठकर जाऊं उस टापू में, तब टापू मिले नहीं, टापू पर ही है। यह हमारा उत्तर है कि मिलन हो रहा है, मिलन है ही, मिलन में ही है, मिलन की ही अवस्था है, एक सेकंड का मिलन है। तुम पूछते हो कब होगा, और भी किससे, हमसे? तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न उनका क्या था, मन को कैसे लगाए? ये मन तो बड़ा मुश्किल है वश में करना। स्वामी विवेकानंद ने मन की तुलना अमेरिका के एक भाषण में बंदर से की है। मन अर्थात बंदर के समान है। फिर इस बंदर को किसी ने दारू पिला दी, शराब पिला दी, अब उसकी जो अवस्था है वो मन की अवस्था है। फिर थोड़े समय के बाद इस बंदर में एक प्रेत आत्मा ने प्रवेश कर लिया, अब यही अवस्था मन की है। और फिर कुछ समय के बाद एक बिच्छू ने आकर उस बंदर को काट लिया। दिस इज द माइंड ऑफ मैन। ये है बंदर, पहले ही कैसा है, चंचल, रेस्टलेस। उसमें किसी ने इच्छाओं की शराब पिला दी, फिर और उसका बेचैनी बढ़ गई, अस्थिर है, एक पल भी नहीं रुकता, योग में सारे विश्व की परिक्रमा करके आता है, काम के प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया और फिर बिच्छू ने काटा। लोभ, पद, प्रतिष्ठा। अब सोचो कैसे इस मन को वश में किया जाए। दुरूह कार्य है, दुर्गम चोटी है मन को वश में करना। तो संसार की आत्माओं ने दूसरा प्रश्न पूछा है, मन को भगवान में कैसे लगाए, और तुमने क्या उत्तर दिया? मन ही बाबा को दे दिया है, मन ही हमारा नहीं है। मन लगाना तो छोड़ो, मन ही दे दिया है। योग का अभ्यास करना है अमृत वेला, सूक्ष्म वतन में जाकर, बाबा ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जो संकल्प है, ये जो बुद्धिमत्ता है, ये जो संकल्पों का दायरा है, ये जो भाव है, ये जो भावनाएं हैं, ये जो यादें हैं, ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो इमेजिनेशन है, ये जो अवेयरनेस है, स्मृति है, दृष्टि है, वृत्ति है, सब कुछ तुम्हारा, तुम संभालो, इसको दिव्य बनाकर वापस दो, इसके साथ कुछ करो, क्योंकि बहुत हलचल कर रहा है ये बंदर। उठा पटक, उठा पटक, एक पल नहीं रुकता है। सुंदर सजाया हुआ ज्ञान और योग का घर तितर बितर कर देता है। भगवान को मन दे देना, ये तुम ले लो। मन मना भवा मध्याची भक्ता माम नमस्करु। हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरे में चित्त एकाग्र कर। तो हमारा उत्तर है कि मन ही बाबा को दे दिया, मन हमारा नहीं, मन पर अब हमारा जोर नहीं, क्योंकि उसको सौंप दिया। परंतु ये सौंपना सूक्ष्म है, उस मन से भी डिटैच होना पड़ेगा, तुम ले लो। तो ये हमारा दूसरा उत्तर था। तीसरा उत्तर उनका प्रश्न क्या था, उनका प्यार कैसे करें? दक्षिण भारत में बहुत महान संत कहो, या जिन्हें अवतार कहा जाता है, या जिन्हें गौरंग कहा जाता है, नदिया के चैतन्य महाप्रभु दिन रात कृष्ण भक्ति, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तीन अवस्थाओं से गुजरते थे। जब जागे हुए होते थे तो हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते थे, जब थोड़ा सा शांत हो जाते थे और चुप बैठते थे तब खो जाते थे उसकी यादों में, और एक तीसरी अवस्था थी उनके जीवन में कि जब वो विरह अग्नि में जलते थे, यहाँ कृष्ण दिखता था, वहां कृष्ण दिखता था, हे कृष्ण कर गिर जाते थे बेहोश। एक दिन रात भर इस बिछोह में, इस विरह की अग्नि में रोते रहे कि हे प्रभु तुम मुझे क्यों नहीं मिल रहे। इतना रोते रहे, प्रेम के आंसू बरस रहे थे, उनका वो पूरा बिस्तर आंसुओं से भीग गया, इतना रोए। और सुबह सुबह एक संसारिक व्यक्ति, एक गृहस्थी आया और उनसे प्रश्न पूछता है कि मुझे थोड़ा बताना भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं, शायद ज्ञान प्राप्त कर संसार में लोगों को सुनाए और अपने अहंकार की तृप्ति करे कि हम भी कुछ कम ज्ञानी नहीं, हम भी बता सकते हैं भगवान से प्रेम करने की विधि। गौरंग कहते हैं, मेरी ये अवस्था देखकर यदि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, तो मेरे बताने से तुम क्या समझोगे। उसका प्रेम शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, गीत में सुना ना, शब्दों में वर्णन किया ना जाए। अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है, व्याख्या देने के प्रयत्न करो और खो जाए। शब्द उस प्रेम का आकलन नहीं कर सकते, ना ही शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि उस प्रेम का वर्णन करे। तो बाबा ने क्या उत्तर देने के लिए कहा उन आत्माओं को जो तुमसे पूछे कि बताओ भगवान से प्रेम कैसा करें, कैसे करें, क्या उत्तर दिया? मुरली सुनी है ना, क्या उत्तर दिया? अरे प्रेम करना तो दूर, हम ही क्या बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए। प्रेम करना तो दूर, हम ही उस प्रेम के सागर बन गए, हम ही मास्टर प्रेम के सागर बन गए। मास्टर प्रेम का सागर नीचे लहरा रहा है, ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें उस सागर पर पड़ रही है और लहरें उठ रही है। कौन सी? प्रेम की, ज्ञान की, सुख की, शांति की, शक्ति की। कितना सुंदर योग का प्रयोग है कि मैं कौन हूं, मास्टर सागर, ऊपर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य की किरणें जितनी बढ़ेगी उतनी लहरें उछलेगी। उपमा दी है बाबा ने, जितनी लहरें उछलेगी, जितनी किरणें बढ़ेगी, जितना प्रकाश और आलोक बढ़ेगा उतनी ही लहरें उछलेगी। सागर में लहरें होती है ना, क्यों होती है? लहरों का कारण, सागर में लहरें क्यों आती है, विज्ञान क्या कहता है, साइंटिफिक रीजन फॉर वेव्स। हवा सबसे पहला कारण है, हवा, हवा बहती रहती है। हम कहेंगे यहां तो हवा नहीं बह रही है सागर में, परंतु जहां हमें दिखाई नहीं पड़ता उस दूर पर कहीं हवा तेज बह रही है और सागर की लहरें उछलती रहती है। पहला कारण विंड है, एक कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, सूर्य का और चंद्रमा का टाइड। तो जितना आकाश में ज्ञान सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा उतनी लहरें और मस्ती से और तेजी से उठेगी, एक एक हिलोर आंदोलित करेगी खुशी में चेतना को। तो मिलन के तीन नाम, मिलन, मेला और मिलाप। संसार की तीन प्रकार की आत्माएं हैं, वेटिंग लिस्ट वाली, वेटिंग वाली, होपिंग वाली और सिंगिंग वाली। तीन प्रश्न, कौन से तीन प्रश्न? कब मिलेंगे, कितना समय लगेगा, कैसे मन लगाए और कैसे प्यार करे। तीन समान दिए। आगे पहला, अनुभव के क्या, अनुभव के क्या, क्या हो तुम अनुभव के? चात्रक, मुरली में शब्द लिखा है चात्रक, वास्तव में शब्द है चातक। चातक नाम का एक पक्षी होता है जो केवल और केवल आकाश से गिरती बूंदे, पर्जन्य, जो बारिश होती है केवल वही पानी पीता है। कितना भी समुन्दर हो, कितनी भी झीलें हो, तालाब हो, नीचे का पानी कभी नहीं पीता, केवल और केवल उसकी नजर टकटकी ऊपर लगी रहती है, चातक पक्षी जिसे कहते हैं। तो तुम अनुभव के चातक हो। ये जो लहरें उठ रही है ये अलौकिक वर्षा है, इस अलौकिक वर्षा के अनुभव के तुम चातक। तो हम सब कौन है? अनुभव के चातक। केवल ज्ञान याद रखने वाले नहीं, केवल पॉइंट्स याद रखने वाले नहीं, केवल मुरली पढ़ने वाले नहीं, केवल मुरली पढ़ाने वाले नहीं, परंतु अनुभव के प्यासे। प्यास किसकी चाहिए? अनुभव की, कि मुझे अनुभव करना है। जैसे महात्मा बुद्ध बैठ गए, 6 साल तपस्या की, कुछ नहीं हुआ, आखिर गिर पड़े और उस बोधि वृक्ष के नीचे इस संकल्प से बैठ गए कि जब तक मैं सत्य को ना पालू तब तक उठूंगा नहीं। ऐसा संकल्प 6 वर्ष में कभी नहीं आया था। जिस रात यह संकल्प आया कि जब तक मैं नहीं सत्य को पालू, एनलाइटनमेंट की अवस्था को ना प्राप्त कर लू, उस निर्वाण की अवस्था को ना प्राप्त कर लूंगा, मैं उठूंगा नहीं, और उसी रात सत्य का अवतरण हुआ। ऐसी दृढ़ संकल्प से बैठ जाना कि जब तक उत्तर ना मिले बाबा उठेंगे नहीं। चाहे वो जीवन की समस्या हो या और कुछ, देगा वो उत्तर। अनुभव के प्यासे बनना है, अनुभव पिपासा जागृत करनी है। थर्स्टी फॉर रियलाइजेशन, थर्स्ट फॉर रियलाइजेशन, कि मुझे अनुभव करना है। बहुतों को सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, मुरलियां बहुत पढ़ ली, अनुभव क्यों नहीं हो रहा, इसका दुख चाहिए। क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? क्या करूं जिससे अनुभव हो जाए? कहां वरदान में, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये भान कहां से आया? क्यों ये भान है और कैसे ये भान चला जाए? कैसे वह आत्मा जो निर्लिंग है उसका अनुभव हो? तो अनुभव के चातक। दूसरा समान है दिल तख्त नशीन। तीन समान। बाबा ओम शांति भवन में बैठे हैं, शायद दूर दूर बच्चे बैठे हैं, दूरबीन से बाबा को देख रहे हैं, शायद अच्छे से देखना चाहते हैं, दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाबा ने कहा है, बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते, परंतु तुम माया की ओर आकर्षित तो नहीं होते। अगर माया की ओर आकर्षित हुए तो दुविधा में जाओगे, और दुविधा क्या है? दल दल दुविधा, ये करूं या वो करूं, यहां रहूं या वहां रहूं, जॉब करूं या छोड़ू, क्या करूं, शेक्सपियर के हेमलेट की स्थिति है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, करूं या ना करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फायदे क्या है नुकसान क्या है, निरंतर इसी का गणित चालू है। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा, अभी भी गणित का यह सम अनिर्णित, अनसॉल्व्ड, जीवन का यह प्रश्न अभी भी अनडिसाइडेड ही है। अभी भी सोच ही चल रहा है क्या करूं और क्या नहीं, इधर जाऊं या उधर। ज्ञानी आत्माएं कहते हैं जीवन के निर्णय एक ढक से ले लो, फिर ये नहीं सोचो कि उस ऑप्शन में क्या था, एक बार कूद गए सो कूद गए। जो प्रतिज्ञा कर ली वो कर ली। बहुत मौके आए भीष्म के जीवन में, जिसने उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने पर उसे बाध्य किया, परंतु नहीं तोड़ी। महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं, एक ही बार संकल्प करते हैं, एक ही बार निर्णय करते हैं। तोड़ना फिर करना, तोड़ना फिर करना नहीं। कुमारियों से कहा ना, वायदा पक्का हो। दिल तख्त नशीन, एक तरफ दूसरी तरफ दलदल है, दूसरी तरफ दुविधा है और दूसरी तरफ चिल्लाना है, चूज एनीवन, क्या चाहिए। माया की तरफ आकर्षण, दलदल के पास जाओगे, देखोगे देखने के लिए कैसी है तो भी खींचेगी, दलदल खींचती है। दूसरा समान, मैं दिल तख्त नशीन हूं। तीसरा समान, बर्थडे गिफ्ट क्या मिली है। तीसरा नेत्र, पहचान का नेत्र। जो नए आए हैं उनसे भी बाबा ने कहा, नए नहीं समझो, क्या समझो, कल्प पुराने हैं, कल्प कल्प वाले हैं। तो हमें मन भावनी सी क्या मिली है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, ऐसी एक गिफ्ट भगवान से मिली, जन्म लिया, और जन्मते ही कौन सा शब्द मुख से निकला, बाबा। तो मिलन के तीन नाम, संसार में तीन प्रकार की आत्माएं, तीन प्रकार के पूछे हुए प्रश्न और हमारे तीन उत्तर, और तीन समान, यह मुरली पूरी होती है। फिर पार्टियों से मुलाकात, हर एक जगह बाबा ने कहा इसका नशा रहता है, इसकी खुशी रहती है, बार बार पूछा है, इसका नशा है इसकी खुशी है, इसका नशा है इसकी खुशी है। तो ऐसी नशे की और ऐसी खुशी की आठ बातें बाबा ने बताई है। तीन पार्टियां हैं, पहली पार्टी में चार पैराग्राफ है, दूसरी पार्टी में एक ही पैराग्राफ है, तीसरी पार्टी में तीन, तो ऐसे आठ। सबसे पहली खुशी की पॉइंट, सबसे पहली नशे की पॉइंट, सबसे पहली विशेष पॉइंट, समान की पॉइंट, सबसे पहली कौन सी है, हम कौन है, विशेष आत्माएं है, समर्थ आत्माएं है। विशेष अर्थात कुछ भी साधारण नहीं, विशेष अर्थात हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, हर संबंध संपर्क विशेष, साधारण नहीं। और हम समर्थ आत्माएं है, समर्थ अर्थात व्यर्थ समाप्त। एक सुंदर उदाहरण दिया है, कौन सा, सूर्य का। जैसे वो सूर्य क्या करता है, गंदगी को नष्ट कर देता है, वैसे ही समर्थ संकल्प व्यर्थ को नष्ट कर देंगे। इसलिए इसके स्मृति स्वरूप बन जाओ, जैसी स्मृति होगी वैसा स्वरूप होगा। स्वयं को याद दिलाना है, मैं समर्थ आत्मा हूं। समर्थ बनने की विधि है संकल्प। हनुमान को केवल संकल्प दिया जामवंत ने कि तुम शक्तिशाली हो, तुमने बचपन में सूर्य को निगल गया लिया था, एकदम से शक्ति जाग गई, जल्दी लांज गए अचरज नाही। फिर कोई आश्चर्य नहीं उसने जो असंभव कार्य कर दिया। अतुलित बल धामा तुम हो, राम रसायन तुम्हरे पासा, राम का वह रसायन तुम्हारे पास है। स्मृतियां जाग उठी, शक्ति भर गई और उड़ गया। मेली मुखमाही, संकल्प मैं विशेष आत्मा हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, पहला समान या पहली खुशी की पॉइंट या पहली नशे की पॉइंट। दूसरा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। एक बहुत सूक्ष्म बात यहां पर बाबा ने कही, यदि अभी तुम में उमंग उत्साह है तो कल्प उमंग उत्साह रहेगा, यदि अभी डिप्रेशन में है, अभी फ्रस्ट्रेशन में है, अभी जीवन में निरस्ता है, अवसाद है, दुख है, दर्द है और उसी में ब्राह्मण जीवन बीत रहा है तो कल्प ऐसा ही होगा, सारे कल्प ऐसा ही होगा। और उमंग लाने की विधि क्या बताई, उमंग लाने की विधि, खजाने को बांटो, जो मिला है उसे बांटो, ये विधि है उमंग को बढ़ाने की। अपने पास नहीं रख देना, बांट लेना। तो दूसरा समान कौन सा है, मैं आत्मा उमंग उत्साह से भरपूर हूं, लबालब भरी हुई, बह रहा है उमंग उत्साह, इतना भरा है कि बहने लगा है ओवरफ्लो। मन की नक्की झील ओवरफ्लो हो रही है। और यदि उमंग उत्साह नहीं है तो क्या करें। एक अंग्रेजी अफसर भारत आता है अपनी गाड़ी लेकर और गुजरते रहता है किसी गांव में देहात बारिश के दिन, और एक दलदल में उसकी गाड़ी धस जाती है। भारत को बहुत सारी गालियां देने के बाद सोचता है क्या किया जाए, देखता है किसान है बाजू में, सोचता है इसकी मदद ली जाए, पास जाता है और खुश होता है क्योंकि किसान के उसी अस्तबल में वहां पर एक घोड़ा भी है, सोचता है इस घोड़े की मदद से गाड़ी को खींचा जा सकता है। उस किसान को कहता है क्या तुम मुझे मदद करोगे, वो कहता है हाँ बिल्कुल, और अपने घोड़े को कहता है ए बादल चल, घोड़े का नाम। पर देखता है जब वो अंग्रेज देखता है ये घोड़ा तो एकदम मरियल और बूढ़ा है, ये क्या खींचेगा। और तो पर फार्मर बड़ा ही कॉन्फिडेंट है अपने घोड़े के बारे में, और घोड़े के गर्दन में रस्सी बांधता है और वो गाड़ी को और उस बादल को कहता है चीते खींच, शेरा खींच, बिजली खींच। तो वो जो बूढ़ा और मरियल घोड़ा होता है अचानक एक अद्भुत शक्ति उसमें आ जाती है और वो खींच लेता है और गाड़ी बाहर। अंग्रेज पूछता है ऐसे बूढ़े घोड़े ने कैसे खींचा, और तुम ये जो दूसरे दूसरे नाम चिल्ला रहे थे वो किसके नाम थे। वो कहता है ये जो घोड़ा है सादा घोड़ा नहीं है, युद्ध का घोड़ा है और ये सारे उसके साथियों के नाम है। अभी तो ये घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, उसे तो पता ही नहीं, मैंने ये इसलिए गाया कि ताकि उसको लगे कि ये सारे आसपास है, और इनका नाम लेते ही इसमें भी उमंग उत्साह आ गया, टीम संगठन तीव्र पुरुषार्थी। जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही है और जो संगठन में है उनके बीच चले जाओ तो अद्भुत साहस आ जाएगा। फिर दलदल माया की दुविधा की दलदल में जहां जीवन की पुरुषार्थ की गाड़ी धसी है वो भी निकलकर बाहर आएगी। तो मन को अलग अलग नामों से पुकारते जाना, हे विशेष आत्मा खींच, हे समर्थ आत्मा खींच, हे उमंग उत्साह वाली आत्मा खींच, तो गाड़ी बाहर आ जाएगी। तीसरा समान अंगद, समान अचल अडोल। विधि है एक रस, एक रस की विधि है, केवल एक में बुद्धि लगे, जो बुद्धि काका मामा चाचा में लगी है उसको वहां से खींचकर निकालो। कैसे खींच के निकालेंगे? खींचने की विधि तो पता ही ना। कैसे खींच कर उसको कहना अंगद खींच। तो तुम सब हो अंगद अचल अडोल आत्माएं, एक रस रहने वाली आत्माएं, सारे रस जिनके एक में है, ऐसी आत्माएं अंगद समान अचल अडोल, हिलने वाले नहीं, बाप ही सब कुछ, एक ही ठिकाना और एक ही सब, एक सर्व प्राप्तियां एक से, ऐसे अंगद तुम हो। संकल्प का पाओ, प्रतिज्ञा का पाओ, भावनाओं का पाओ, निश्चय का पाओ, प्रभु प्रेम का पाओ, एक रस्तिति का पाओ, कोई हिला ना सके, ऐसे अंगद। तो हे अंगद खींच बुद्धि को संसार से बाहर। चौथा समान कौन बताएगा? पार्टियों से मुलाकात में फोर्थ पैराग्राफ। हीरो पार्टधारी, उदाहरण दिया है जैसे वो पार्टधारी होते हैं उनको खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए। किसके साथ पार्ट बजा रहे हो, किसके सहयोगी हो, किस कार्य के निमित्त हो। और जो हीरो पार्टधारी होता है उनको कितना ध्यान रखना पड़ता है। फिल्म की शूटिंग होती है तो कितनी बार वो टेक टेक करते हैं एक ही सीन के लिए, और जब एक सीन पूरा हो जाता है और थोड़ा टाइम होता है दूसरे सीन के लिए, तुरंत वो मेकअप वाला आ जाता है, आईना सामने रखता है और उनको मेकअप चालू करता है। सामने रखता है ना आईना और बाल बिल ठीक करता है दूसरे सीन के लिए, एक एक सीन की चेकिंग, क्योंकि हीरो पर ही तो फिल्म का दारोमदार है। फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, फ्लॉप होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, क्या होगा। यहां पर भी शूटिंग चल रही है, सतयुग में रिलीज हो जाएंगी, बाद में फिर चेंजेस नहीं कर सकेंगे, जो करना है अभी, स्लेटेड टू रिलीज इन सतयुग, वंस ऑन द फ्लोर नो चेंज। एक बार आ जाए, रिलीज हो जाए विश्व भर में, फिर चेंज नहीं होगी। कल्प कल्प की बाजी है। मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं, 5000 वर्ष की लकीर खींच गई, सुंदर शब्द है। तो ये चार समान हुए। पहला, मैं विशेष आत्मा हूं, समर्थ आत्मा हूं। दूसरा, उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूं, दूसरों को उमंग उत्साह में लाने वाली आत्मा हूं। तीसरा, अंगद समान अचल अडोल एक स्थिति में स्थित आत्मा हूं। एक एक संकल्प बहुत पावरफुल है। एक संकल्प जीवन को बदल सकता है। जीवन को बदलने के लिए क्या चाहिए? संकल्प। एक अमीर व्यक्ति है, करोड़पति है, लखपति, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, एसी कमरा है, बिस्तर है, फिर भी नींद नहीं आती, परेशान है, दुखी है, उदास है। एक दूसरा बाबा की एक बच्चा है या कोई एक माता है जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मुरली में एक दिन बैठी थी और स्लोगन उसने सुना, संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, बस बिना पढ़ी लिखी माता ने इसको अपने हृदय में धारण कर लिया और उसी संकल्प ने उसे इतना स्थिर बना दिया कि रात में आराम से नींद करती है। जबकि वो करोड़पति नहीं कर पाता। कैसे? संकल्प। ज्ञान की एक एक पॉइंट क्या है? लास्ट संडे की मुरली रत्न है। रत्नों से खेलो, रत्नों से पलो, रत्नों से झूले में झूलो, रत्नों का सौदा करो, रत्नों को कार्य में लगाओ, रत्नों में बिजी रहो और रत्नों का क्या करो? दान करो। मुरली में था ये। तो रत्नों से खेलना। तो ये चार समान। फिर उसके बाद में सेकंड पार्टी से मुलाकात और हमारी फिफ्थ पॉइंट। इसमें फिर से बाबा ने कहा तुम एक रस हो, एक से सारे संबंध है। कुमारियों से बातें की बाबा ने, कुमारियों को दो चीजें चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए? अच्छा वर चाहिए, कैसा? अच्छा हैंडसम। और कैसा वर चाहिए? अच्छे घर वाला चाहिए। तो यहां तुम्हें ऐसा घर मिलता है मधुबन, ये पावन भूमि, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसा वर मिलता है जिसकी चर्चा, जिसकी महिमा सारा विश्व करता है, त्रिभुवन में जिसकी महिमा है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है, ऐसा सुंदर, ऐसा हसीन, तुम सा हसीन बाबा, ऐसा ये हसीन मुसाफिर है कि माया हसीना इसके सामने मूर्छित है। तो ऐसा बहु त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन सुंदरम, ऐसा वर्ष और कहां मिलेगा। दूसरा घर तो कुमारियों ने वादा पक्का किया है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, कुमारी अर्थात बच गई है जो गिरने से, और माता अर्थात गिरी और बची गोपाल की गोवे है। वो जो गोविंद है, वो जो गोपाल है, दिखाया है कृष्ण। ज्यादा समय किसके साथ बिताता है? गौओं के साथ। वो गौवे भक्ति मार्ग में बताते हैं जन्म जन्म की तपस्या करने वाली ऋषि मुनिया थी, और वो ऋषि मुनियों को तपस्या से भगवान प्रकट हुए और कहा बोलो। उन्होंने कहा जब तुम अवतार लोगे द्वापर में कृष्ण अवतार, तब हमें अपने साथ ही रखना। तो दिखाया है वो सारे ऋषि गाय बन गई, और कृष्ण ज्यादा समय गोपियों से साथ कम रहता है, गायों के साथ ज्यादा रहता है। और जब आता है उधर से, वो गायों के पग से उड़ने वाली सारी धूल उसके शरीर में लगी होती है, भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम और सम्मान और सत्कार का प्रतीक। चरण रज को अपने अंग अंग से धारण कर लिया, मैं आया हूं तुम्हारी सेवा करने, तुम्हारा सर्वेंट हूं। गोपाल की गैया है, गोपाल की गैया है। तो हमारा पांचवा सम्मान है, मैं समझदार हूं। कुमारियों को क्या कहा? कुमारी अर्थात समझदार, जिसने एक वर को चुना, एक घर को चुना। समझदार हूं, एक रस हूं, और उस गोपाल की गैया हूं। लास्ट पार्टी जिसमें तीन बातें हैं, हमारा छठवां पॉइंट, माया जीत। मैं माया जीत आत्मा हूं। माया जीत अर्थात जो माया जीत होंगे वही विश्व कल्याण कर सकेंगे, जो माया जीत नहीं वो विश्व कल्याण नहीं कर सकते। जिनमें अभी भी माया आती है, जिनके अंदर अभी भी ऐसे विकार के संकल्प आते हैं, और अभी भी वो विकार आकर्षित करता है, और वो दलदल में पैर धंसता है और फिर बाहर निकलता है, वो विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। बेहद अर्थात बेहद की सेवा, विश्व की सेवा। तो छठवां सम्मान क्या हुआ? माया जीत। सातवां कौन बताएगा? थर्ड पार्टी में सेकंड पैराग्राफ, वो लास्ट है। किस मस्ती में मस्त? ईश्वरीय मस्ती में मस्त। जो ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते हैं उनकी निशानी, वो अर्श में नहीं रहे, कहां रहते? फर्श में रहते कि उल्टा? फर्श में नहीं रहते, फर्श उनको पसंद नहीं है। कहां चलते हैं? अर्श पे। अर्श निवासी जो है आसमान पर उसके कदम पड़ते हैं, बुद्धि रूपी पाव, देह रूपी मिट्टी में को स्पर्श न करे, बुद्धि का पैर ऊपर हो, इस संसार का कोई आकर्षण उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। ये जो संसार में विकार है, ये जो संसार में नेकेडनेस नग्नता है, ये जो माया का डांस है, उन्हें आकर्षित नहीं करता। सारी देह मिट्टी है, दलदल है, मिट्टी को व्यर्थ समझ के ऊपर उड़ना, मिट्टी से प्राप्त होने वाला सुख, मिट्टी से होने वाला मिलन क्षणभंगुर है, व्यर्थ है। जान लिया जहर है, पॉइजन है। कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया था, काम पुर्जा पुर्जा कर देता है। काम चीत, देह उन्हें नहीं खींचती, बुद्धि को देह की तरफ आने ही नहीं देना। वरदान में कहा है, कहां की स्त्री और कौन पुरुष, स्त्री और पुरुष के भान से परे युगल ही बनने का ज्यादा शौक है तो बाप और मैं ऐसे युगल बनो। अखरता है यदि दूसरे युगलों को देखकर कि हमारा कोई नहीं है, दुख होता है हाथों में हाथ डालकर दूसरों को देखते और घूमते हुए, तो किसके हाथ में हाथ डालो और घूमो, बाबा के हाथ में हाथ डाल के घूमो। ऐसा अविनाशी साजन फिर ना मिलेगा, हाथ नहीं छोड़ेगा, उधर का तो क्या भरोसा। तो बुद्धि को ज्ञान रत्नों में बिजी रखना, ज्ञान की पॉइंट्स गिनने में बिजी रखो। लास्ट संडे की मुरली, ये था वो पॉइंट सातवां, दान करने का नहीं था, पॉइंट्स को गिनने का था। तो सेवेंथ इज मस्ती में रहना, ईश्वरीय मस्ती में रहना। संसार के लोग होते कितनी खुशी होती है उनको, धन की, कुर्सी की, नेतापन की, तो तुम्हें क्या होनी चाहिए, यह अविनाशी खुशी। और लास्ट पॉइंट, स्वराज्य अधिकारी भक्ति मार्ग में कौन सा गीत गाते थे, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम, अब क्या गाते हो, मैं स्वराज्य अधिकारी मैं स्वराज्य अधिकारी मैं स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी इस समान में स्थित हो जाओ, इस नशे में स्थित हो जाओ, तो ये जो कर्मेंद्रिया है जो सुनती नहीं, वो अपने आप रास्ते में लग जाएगी, श्रेष्ठ मार्ग पर लग जाएगी, अपने आप बुद्धि सीधी हो जाएगी उनकी। तो ऐसे ये टोटल कितने नशे हुए, खुशी 8। ऐसे अधिकारी आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे कैसे मिलन मेला मनाने वाले अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे मास्टर सागर बन लहरें, मास्टर प्यार के सागर की लहरें उछालने वाली आत्माओं को, ऐसे दूर बैठे दूरबीन लिए देश और विदेश के दूर बैठी आत्माओं को, और इस मुरली में विशेष बाबा ने किसको याद किया, अनजान उनको भी याद किया। ऐसी अनजान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सभी योग में बैठेंगे, मैं प्यार का सागर, मास्टर प्यार का सागर, ऊपर ज्ञान सूर्य, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है और लहरें उछल रही है। ओम शांति।